आप हैं SBS हिंदी के साथ।
सुधांशु गुप्त की कहानी मार्च में मई जैसी बात। मार्च का महीना है, मौसम में अभी रुमानियत बची है। वो सोकर उठा है लेकिन उसने अभी बिस्तर नहीं छोड़ा है। नींद खुलने के बाद कुछ देर बिस्तर पर लेटे रहना उसे हमेशा अच्छा लगता है। इस वक्त उसे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह के 10 बज चुके हैं, अखबार की नौकरी रात देर तक चलती है। देर से घर आओ, देर से सो और फिर देर से उठो। उसने पाया है कि वो आज अन्य दिनों के मुकाबले ज़्यादा खुश है। आज उसकी छुट्टी है। अखबार में रविवार को भाग्यशाली लोगों को ही छुट्टी मिलती है। आज सोमवार है, आज उसका वीकली ऑफ है। लेकिन वो इसलिए खुश नहीं है कि आज उसका ऑफ है, उसे आज एक लड़की से मिलने जाना है। यही बात उसकी खुशी की वजह है। उसने फुर्ती से उठकर वॉश बेसिन पर मुंह धोया और वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। किचन से आने वाली आवाज़ें बता रही हैं कि पत्नी चाय बना रही है। उसने देखा सामने की दीवार पर घड़ी समय बता रही है। अभी उसके पास काफ़ी समय है। उसने दीवार की तरफ पीठ कर ली। अब उसके सामने खिड़की है, खिड़की जो हमेशा बंद रहती है। खिड़की के दोनों सिरों पर कुछ किताबें बेतरतीब रखी हैं। लकड़ी के फट्टों वाली खिड़की के दोनों किवाड़ों में जाली लगी है। बाहर एक और दरवाज़ा है जो बंद रहता है। उसके दोनों पल्लों पर शीशे लगे हुए हैं। खिड़की खुलने की कोई संभावना नहीं है। फिर भी उसे बाहर की दुनिया सुंदर लग रही है, रूमानी लग रही है, पता नहीं क्यों। चाय, पत्नी ने चाय का कप उसके बेड पर रखते हुए कहा। उसने पलटकर पहले चाय और फिर पत्नी को देखा। दोनों की नज़रें पल भर के लिए मिली। पता नहीं पत्नी उसके चेहरे पर क्या तलाशती रही। खिड़की के बाहर क्या देख रहे हो? उसने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, सोच रहा हूं कि ये खिड़की कैसे खुल सकती है। ये खिड़की नहीं खुल सकती, सालों से बंद है, अब तो जाम हो गई है, पत्नी ने आत्मविश्वास से कहा। वो फिर खिड़की के बाहर की रोमानी सी लगती दुनिया को देखने लगा। आज कहीं जाना है क्या? पत्नी ने पूछा। हाँ, जाना है किसी से मिलने। पत्नी ने नहीं पूछा कि किससे मिलने जाना है। वो भीतर किचन में चली गई। उसे इस बात से बड़ी राहत मिली। पत्नी सीधी हो तो उसके बहुत फायदे हैं। वो ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करती, पति पर आंख बंद करके भरोसा करती है। उसे कुछ भी कहकर बहकाया जा सकता है, चीट किया जा सकता है। उसे पत्नी के रूप में अपनी पसंद पर पहली बार खुशी हुई। वो खिड़की के बाहर की दुनिया को छोड़कर भीतर आया। उसने घड़ी को देखा, अभी 11 बजने में थोड़ा समय है। अगर वो 11 बजे भी तैयार होना शुरू करेगा तो 11:30 बजे तक तैयार हो जाएगा। मंडी हाउस पहुंचने में मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। उससे मिलने का समय 12 बजे का है। आज पहली बार उससे मुलाकात होगी। क्या पता प्रेम की कोई नई खिड़की ही खुल जाए। उसे वो कुछ समय से जानता है, सुंदर है, समझदार है। नाश्ते में क्या खाओगे? पता नहीं पत्नी कब अंदर से आकर उसके पास खड़ी हो गई। पत्नी के लिए समझदार का एक ही अर्थ है, पति को सही समय पर नाश्ता, लंच और डिनर उपलब्ध कराना। कुछ भी बना लेना, इस समय नाश्ते के बारे में सोचना उसे खराब सा लगा। पत्नी फिर से अंदर चली गई और वो उठकर जाने की तैयारी करने लगा। वो ठीक 15 मिनट बाद तैयार होकर शीशे के सामने खड़ा था, ब्लैक पैंट और ब्लू शर्ट में। शीशे में उसने खुद को देखा। पहली बार उसे लगा कि वो स्मार्ट है। एक बार उसने कहा भी था, ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। वो अच्छा लग रहा है। सब कुछ योजना के मुताबिक ही चल रहा था। आज पहली बार उसने बाहर किसी जगह मिलने के लिए स्वीकृति दी थी। उसने कंघी से बाल सेट किए। वो पीछे की तरफ बाल बहाता है, बाईं तरफ के बाल थोड़े से कम हैं और दाईं तरफ के ज़्यादा। फिर से वो दाईं तरफ के बालों को कुछ इस तरह सेट करता है कि बाल ऊपर को उठ जाते हैं, बिल्कुल फिल्मी नायकों के बालों की तरह। बाकी सब तो ठीक था लेकिन दाईं तरफ के बाल ऊपर उठने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। उसने कंघी को उल्टा करके बालों पर इस तरह फेरा कि बाल सेट हो जाएं और दाईं तरफ का बालों का हिस्सा ऊपर को उठ जाए, लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद भी ऐसा नहीं हो रहा है। उसे एहसास हुआ कि शीशे के सामने उसे काफ़ी समय हो गया था। बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, जब वो 18-19 साल का रहा होगा तब उनके घर में ड्रेसिंग टेबल नहीं था। उसे हाथ में छोटा सा शीशा लेकर बाल बहाने होते थे। एक बार वो इसी तरह बाल बहा रहा था, पता नहीं उसे देर हुई थी या नहीं, लेकिन पिता ने दूसरे कमरे से आवाज़ लगाकर पूछा था, क्या बात है, आज किसी खास जगह जाना है? समझ गया था कि पिता समझ गए हैं कि उसे कहाँ जाना है। पिता की नज़रें बहुत पैनी थीं। पिता को जवाब देने का अर्थ होता उनके जाल में फंस जाना। वो चुप रहा और पिता के चेहरे पर मुस्कुराहट खेलने लगी। लेकिन अब पिता नहीं रहे, अब कोई नहीं है जो उसकी चालाकी या धूर्तता को पकड़ सके। घर में पत्नी और वो अकेले हैं। उसने दाईं तरफ गर्दन को मोड़ कर देखा, पत्नी जमीन पर अखबार बिछाकर भिंडी काट रही थी, अपने आप में डूबी हुई। उसने बालों पर आखिरी बार कंघी फेरी, शीशे में एक बार फिर से खुद को देखा और सब कुछ ठीक पाने पर कमरे से बाहर आ गया। उसके बेड पर ही चाय और एक सैंडविच रखा है। वो चुपचाप खाने लगा। उसने पत्नी को ध्यान से देखा। पत्नी एक एक भिंडी को पहले पानी में से निकालती, फिर कपड़े से पोंछती और उसके बाद एक अलग बर्तन में काटती। किससे मिलने जाना है आज छुट्टी के दिन? पत्नी का पूरा ध्यान अब भी भिंडी काटने पर ही था। उसे आश्चर्य हुआ, पत्नियां एक साथ दो या तीन जगह ध्यान कैसे लगा पाती हैं? इसका मतलब हुआ कि वो उसे देर तक शीशे में बाल बनाते हुए देख रही होगी, या कम से कम उसके जल्दी बाहर न आने से उसने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज तैयार होने में ज़्यादा समय खर्च हो रहा है। कहाँ खोए हो, मैं पूछ रही हूँ किससे मिलने जाना है, पत्नी ने दोबारा पूछा। इस बार वो उसकी ही तरफ देख रही थी। पता नहीं सवाल की गर्मी थी या जिससे वो मिलने जा रहा है उसके प्रति प्रेम भावना। उसका चेहरा लाल हो गया, फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, किसी लड़की से मिलने जाना है। उतना तो मैं भी समझ गई हूं कि किसी लड़की से ही मिलने जा रहे हो, लेकिन किस लिए? पत्नी मानो इस मुलाकात की हकीकत जानने पर अड़ी हुई थी। वो सोचने लगा कि किस लिए मिलने जा रहा है वो उससे, कौन है वो उसकी और क्या होने की संभावना है। उसने एक बार फिर से पत्नी की तरफ देखा। पत्नी के चेहरे पर अभी कोई तनाव नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसके लिए भिंडी काटना दुनिया का सबसे अहम काम है। उसके मन में आया कि पत्नी यूं ही पूछ रही होगी, उसके मन में कुछ होगा नहीं। आखिर पत्नियों के सीधा होने का कुछ तो फायदा मिलना चाहिए। पता नहीं उसके मन में क्या आया, उसने कहा, सोच रहा हूं कि एक बार फिर से प्रेम कर लिया जाए, तुम्हारी तो प्रेम में कोई रुचि है नहीं। पत्नी कुछ देर चुप रही। ऐसा नहीं था कि वो इसका जवाब सोच रही थी। भिंडियों में से एक खराब निकल आई थी और शायद वो इसी से परेशान थी। बात को बढ़ाने के लिए उसने फिर से कहा, तुमने तो न शादी से पहले प्रेम किया, न शादी होने पर, और अब शादी के बाद किसी और से तो प्रेम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पत्नी ने पहली बार भिंडियों से ध्यान हटाकर उसकी तरफ देखा, बिना किसी उत्तेजना के, बिना किसी शिकायत के। उसने एकदम सादगी से कहा, ऐसी किसी गलतफहमी में मत रहना। फिर वो पहले की तरह भिंडियां काटने में लग गई। शायद भिंडियां पूरी कट चुकी थी। पत्नी उठी और किचन में चली गई। वो कमरे में अकेला रह गया। पता नहीं क्यों अचानक उसका सारा उत्साह छूमंतर हो गया था। उसने खिड़की के बाहर देखा। बाहर भी अब उसे किसी तरह की रोमानियत दिखाई नहीं पड़ रही थी। घड़ी में 11:45 हो चुके थे। 15 मिनट में उस लड़की के पास पहुंचना संभव नहीं था। पत्नी का ये वाक्य उसके जहन में बज रहा था, ऐसी किसी गलतफहमी में मत रहना। उसे पता नहीं क्यों ये बात ऐसी लग रही थी मानो मार्च के रूमानी मौसम में किसी ने मई की तपती धूप जैसी बात कर दी हो। उसका बाहर जाने का मन नहीं रहा। उसने कपड़े बदले और आकर अपने पलंग पर लेट गया। पत्नी ने भी नहीं पूछा कि जा क्यों नहीं रहे हो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, सुधांशु गुप्त स्वयं मेरे साथ हैं, जिनकी कहानी अभी अभी आपने सुनी है। सुधांशु गुप्त के पास कहानी लिखने का लंबा अनुभव है और कहानी लिखने के साथ साथ वो पत्रकारिता भी करते रहे हैं, इसलिए शायद आपको भी महसूस हुआ हो उनकी कहानी सुनते हुए कि ज़िंदगी बहुत करीब है उनकी कहानियों के। ऐसा मैं उनकी दूसरी कहानियाँ पढ़ने के बाद भी महसूस कर पाया हूँ। उन्होंने जगह जगह कहानियाँ लिखी हैं, बहुत सारी मैगज़ीन्स में कहानियाँ छपी हैं, पर हाल ही में उनके कहानी संग्रह भी आए हैं। और बहुत दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने एक संपादन भी किया है कहानी संग्रह का, जिसमें युवा कहानीकारों की कहानियाँ हैं। उनके कहानी संग्रह जो खाली कॉफ़ी हाउस और उसके साथ चाय का आखिरी कप नाम से प्रकाशित हुए हैं, तो इस कहानी पर और सुधांशु गुप्त दोनों पर बातचीत करने के लिए सुधांशु जी स्वयं मेरे साथ हैं। सुधांशु जी आपका स्वागत है।
शुक्रिया विवेक जी।
भाई अभी अभी हम आपकी कहानी मार्च में मई का महीना सुनकर हटे हैं और सच कहें तो हटे नहीं हैं क्योंकि कहानी अभी भी हमारे साथ है। तो उस कहानी के बारे में पहले थोड़ा सा बताइए कि वो कहानी क्या कहती है लेखक की नज़र से अगर आप बता सकें।
देखिए विवेक जी, मेरा कहानी को लेके अपनी कुछ मान्यताएं हैं। मैं बराबर ये महसूस करता हूँ कि कहानियां घटनाएं नहीं होती है। हम नॉर्मली जो हिंदी का पाठक है वो घटनाओं को ही कहानी मानने की भूल करता रहा है और आज भी करता है। मैं हमेशा, मुझे कहानी जो दिखाई देती है, मैं जहाँ से कहानी को देखता हूँ, मैं उन घटनाओं के परे जो संभावनाएं हैं, जो हो सकता है या जो होना चाहिए, उसमें कहानी तलाश करता हूँ। मेरी अपनी जितनी भी कहानियां हैं वो उन घटनाओं के परे जाकर कहानी को तलाशने की कोशिश है। मार्च के महीने में मई जैसी बात कहानी भी, अगर आप ध्यान देंगे उस बात पर, तो जो सामने हो रहा है उसके पीछे जो चल रहा है वो कहानी है। मुझे हमेशा ये बात लगती है कि कहानी में जो कहा जा रहा है उसे तो पाठक को समझना ही चाहिए। जो कहा नहीं जा रहा, ये जो कहानी में अनुपस्थित है, वो भी समझना बहुत जरूरी होता है। तो इस कहानी में जो पूरा परिवेश है वो एक लड़की से मिलने का परिवेश है कि नायक कहानी का अपने घर में रह रहा है, घर का पूरा वातावरण है और एक लड़की से मिलने जा रहा है। तो मूल रूप से ये कहानी उन प्रेम की उन संभावनाओं को तलाश करने की कहानी है जो जीवन में शायद नहीं होती लेकिन हर आदमी के मन में ये संभावनाएं बनी रहती है। मैं इस कहानी में वास्तव में उन्हीं चीजों पर उंगली रखने की कोशिश करता हूँ जो हमारे मन की दुनिया है। एक तरफ कहानी आपको बाहर की दुनिया दिखा रही है लेकिन मूल रूप से कहानी आपको मन की दुनिया में ले जा रही है, जो हर आदमी के मन में जो बात रहती है। तो इस कहानी में मैंने यही दिखाने की कोशिश की है।
अच्छा, इस कहानी में आपने एक बहुत ही खूबसूरत प्रतिबिंब का इस्तेमाल किया है, वो जो खिड़की जो कभी खुलती नहीं है, जो हमेशा बंद रहती है।
जी जी जी।
तो वो प्रतिबिंब बेशक हर व्यक्ति अपने हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन करेगा। मुझे लगा कि वो खिड़की दरअसल पति और पत्नी के बीच का जो रिश्ता है, वो जो बंद हो चुका रिश्ता है, इसके बावजूद वो है, उसकी बात करती है। आप किसकी बात करते हैं, आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है?
देखिए, खिड़की हमारे यहाँ जो प्रतीक के तौर पर जब भी खिड़की का इस्तेमाल किया जाता है वो बाहर की दुनिया देखने के लिए होता है, बाहर की दुनिया से जुड़ने के लिए होता है। वो एक ऐसा प्रतीक है जो संवाद के रास्ते खोलता है, जो लोगों से जुड़ने की प्रक्रिया होती है। तो खिड़की का साहित्य में जब भी इस्तेमाल हुआ है वो कनेक्ट करने के लिए हुआ है। तो इस कहानी में मैंने उस खिड़की का जिक्र किया है जो घर में बंद रहती है। एक तरफ वो खिड़की जो है पति पत्नी के रिश्तों में जो ठहराव आ गया है, जो बाधाएं आ गई हैं, जो रिश्ते एक जगह पर आकर ठहर गए हैं, उनको खोलने की कोशिश है, उनको खोलने की आकांक्षा की बात करती है। लेकिन इसी के समानांतर खिड़की जो है वो ऐसे नायक के बारे में भी बात कर रही है जो अपनी दुनिया में सीमित हो गया है, जो बाहर की दुनिया से लगातार कट रहा है। वो बार बार कोशिश कर रहा है किताबों के माध्यम से, खिड़की के माध्यम से, बाहर के लोगों के माध्यम से दुनिया से जुड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन जुड़ नहीं पा रहा। तो खिड़की यहाँ पर इन सारे प्रतीकों को दिखा रही है कि एक नायक जो अपनी पत्नी से संवाद करना चाहता है, पत्नी से जुड़ना चाहता है, एक नायक जो बाहर प्रेम की संभावनाएं तलाशता है, और खिड़की पर किताबों का रखा रहना भी, जो आप खिड़की में जो किताबें रखी हुई हैं वो भी दरअसल किताबों को भी खिड़की मानकर चलता है। ये दुनिया में किताबों से बेहतर खिड़की कोई नहीं हो सकती। तो हर दृष्टिकोण से वो खिड़की अपने अपने अर्थ
देती है। जो नई कहानियां हैं सुधांशु जी, उसमें प्रतीक बहुत हावी हो जाते हैं, कथ्य कम नजर आता है और वो कहानी प्रतीकों और प्रतिबिंबों में ज्यादा घूमती है, ऐसा मैंने महसूस किया हाल में जब मैं कहानियां पढ़ता हूँ। आपकी कहानी ऐसी नहीं है, आपकी कहानी में प्रतीक हैं, वो एक उन प्रतीकों के बावजूद कथ्य है, उन प्रतीकों के बावजूद कथ्य उतना ही हावी है और नायक नायिका उतने ही ज़रूरी हैं उस कहानी में जितने की प्रतीक हैं। तो आप नई कहानियों को कैसे देखते हैं?
विवेक जी, डॉक्टर नामवर सिंह ने बहुत अच्छी बात कही थी जो मुझे हमेशा याद रहती है कि जब हम उपमाओं का इस्तेमाल करते हैं, प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, तो आम तौर पर हम कथा रस को बाधित कर रहे होते हैं। तो हमें उतने ही प्रतीकों की जरूरत होती है जो कथा रस को बाधित ना होने दें। पहली बात तो ये, नई कहानी में दो तरह की दिक्कत है मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत कहानियां पढ़ता हूँ आज के समय में, युवा लेखकों की भी और पुराने लेखकों की भी। हमारा जो पूरा फोकस है वो घटनाओं पर आ गया है, घटनाओं पर शिफ्ट हो गया है। अगर आप और गौर करेंगे तो पाएंगे कि अधिकांश लोग पत्रकारिता से जुड़े हुए कहानी की तरफ आ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पत्रकारिता में हमारे द्वारा प्राप्त की गई जितनी भी सूचनाएं हैं उनका हम कहानी पर इस कहानी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि कहानियों में एक तरफ तो सूचनाएं हावी हो रही हैं। सूचनाओं के हावी होने से क्या होता है कि कहानी वाला एलिमेंट उसमें से खत्म हो जाता है, पहला ये दिक्कत आ रही है। दूसरी बात क्या है, हम भाषा और शिल्प पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मेरी कहानियों में क्या है, अगर आपने देखा होगा, मैं कोई मुश्किल शब्द इस्तेमाल नहीं करता कहानी में, कहीं भी एक भी शब्द।
क्या ये डेलिब्रेट होता है?
मैं सब कुछ, मेरी, मैं जो कहानियां लिखता हूँ अवचेतन की कहानियां लिखता हूँ। कहानी बाहर से मैंने, मान लीजिए कोई घटना देखी, नोट की, वो मेरे अवचेतन में मैच्योर होती है, तब मैं कहानी की डिलीवरी करता हूँ। मैं कुक्ड कहानियां नहीं लिखता, है ना, मैं उधार के अनुभवों पे कहानियां नहीं लिखता। जो भी कुछ है मेरे जीवन में घटित हुआ है, घटित हो रहा है, उसमें से कहानी पकड़ता हूँ। तो नॉर्मली क्या होता है, जो लोग प्रतीकों के चक्कर में, खास तौर से जो रोमानी कहानियां हैं उनमें प्रतीकों का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं आज के लेखक, उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो यही दिक्कत आ रही है कि कहानी प्रतीकों में चल रही है, इतनी प्रतीकों की जरूरत नहीं होती कहानी में। कहानी अपने आप अपने प्रतीक ढूंढेगी, कहानी अपने आप अपनी भाषा तलाश करेगी। भाषा सिर्फ परिधान है कहानी के।
आपको तो, क्या लगता है सुधांशु जी, जो नया पाठक है वो क्या पसंद कर रहा है? उसको सीधी कहानियां, सादी कहानियां पसंद आ रही हैं, या वो भी प्रतीकों को, प्रतिबिंबों को, शिल्प को ज्यादा अहमियत देता है?
देखिए, ये बहुत, मतलब बहुत गंभीर बात है। अगर हिंदी पाठकों को आप देखें तो हिंदी में तमाम तरह की ऐसी वेबसाइट्स आ गई हैं जो आपको लेखक बनने का मौका मुहैया करा रही, जो कहती हैं कि आप लेखक बनिए। तो उसमें क्या हो रहा है, जो कहानी की समझ ना रखने वाले लोग भी हैं वो भी कहानियां लिखने लगे। भाई, हर आदमी के जीवन में प्रेम भी होता है, झगड़े भी होते हैं, कलह भी होती है, तो उसको आपने उठाया और लिख दिया। तो इससे क्या हो रहा है, जो औसत दर्जे के लेखक हैं वो बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहे हैं। मेरा ये मानना है कि कहानी का काम सिर्फ लोगों को सूचनाएं देना, घटनाओं की जानकारी देना, यही नहीं है।
सुधांशु जी, ये बात कहते हुए क्या आपको डर नहीं लगता? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि कहानीकारों में, लेखकों में तो एक, वो क्या बोलते हैं उसे, क्लाउटिंग चलती है, क्लाउड्स होते हैं, और अगर आप उनके खिलाफ बोलेंगे तो फिर वो आपके खिलाफ हो जाएंगे।
नहीं, ये तो देखो, हिंदी में लॉबिंग हमेशा से रही है
जी।
आज की तारीख में अगर आप देखें, किसी की किताब पर आप समीक्षा लिखिए, आलोचना आपने कर दी तो आप नाराज, आप उसके ब्लैक लिस्ट में आ गए। अब अगर आप आलोचना पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि आलोचना करने वाला बचा ही नहीं है। आप मेरी कहानी की तारीफ करिए, मैं आपकी कहानी की तारीफ करूंगा, ये गलत ट्रेंड है, ये गलत किस्म की प्रवृत्तियां हैं जो साहित्य को लंबे समय बाद एक बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। कहानी का काम पाठक को अपडेट करना भी है, कहानी का काम पाठक को ये समझाना भी है कि कहानी सिर्फ वही नहीं है जो आप पढ़ रहे हैं, कहानी उससे परे की चीज है।
आपकी एक कहानी है स्माइल प्लीज, उसमें आप एक जगह लिखते हैं कि इतना खुश आदमी कहानी कैसे लिख सकता है। तो क्या वाकई कहानीकार होने के लिए, कहानी कहने के लिए उदास होना, दुखी होना जरूरी है?
ये बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल पूछा है। दरअसल जो स्माइल प्लीज कहानी है, मेरा इसी नाम से संग्रह भी आया है, अभी तीसरा कहानी संग्रह स्माइल प्लीज के नाम से। तो स्माइल प्लीज उन प्रवृत्तियों पर लिखी गई कहानी है जो कहानी को एग्जीबिशन में बदलती है, जो कहानी को प्रदर्शन में बदल रही है ना। नॉर्मली क्या होता है कि ये कहानी मैंने उस समय लिखी, यदि मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि मैं कोई भी कहानी किसी और के अनुभव से नहीं लिखता, मैं जो भी कुछ है मैं अपने आप लिखता हूँ। तो इसमें क्या हुआ, फेसबुक पर मेरे फ्रेंड ने 4 लोगों की फोटो मुझे भेजी, तो उसमें मैंने देखा कि यार 3 लोग तो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, चौथा आदमी जो है बहुत दुखी सा लग रहा है। तो मैंने ये पाया कि यार क्या लेखक को इतना खुश होना चाहिए, क्या लेखक को इतना खुश दिखना चाहिए, या क्या ऐसा लेखक जो स्माइल प्लीज कहते ही मुस्कुराने की ताकत रखता हो, क्या उसको लेखक होना चाहिए? तो मैंने ये पाया कि ये गलत प्रवृत्ति है ना, जो पूरे समाज में पॉपुलर हो रही है। अब इसका क्या नतीजा क्या हो रहा है कि वही लोग आगे बढ़ रहे हैं, साहित्य में ही नहीं, राजनीति में आप देख लो, अगर आप सुंदर नहीं है, अगर आपका फेस फोटोजेनिक नहीं है, तो आप राजनीति में आपके पोस्टरों में फोटो नहीं चाहिए। तो मैंने अपनी कहानी में उस प्रवृत्ति की तरफ इशारा किया है जो हमें लिखने से ज्यादा दिखने को महत्वपूर्ण बना रही है, हमारी मुस्कुराहट को महत्वपूर्ण बना रही है। तो वैसे भी एक मुहावरे के तौर पे बोला जाने लगा है आजकल कि कहानियां पढ़ी नहीं जाती, देखी जाती हैं। जो भी आपकी कहानी किसी मैगजीन में छपती है तो अधिकांश लोग यही कहते हैं यार आपकी कहानी देखी, जबकि कहानियां देखने की चीज नहीं है, कहानियां पढ़ने की चीज है। तो ये उन प्रवृत्तियों पर है जो हंसने को ही सब कुछ मानकर चल रहे हैं। हंसने का मतलब यहाँ एग्जीबिशन है, आप प्रदर्शन करने में यकीन रखते हैं, आपका काम प्रदर्शन, जबकि कहानी का काम प्रदर्शन नहीं। ये मेरा मतलब है ये कहने का,
कहानी का काम प्रदर्शन नहीं। इस सीख के साथ, इस पंक्ति के साथ हम विराम देते हैं। सुधांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और चर्चा करने के लिए।
शुक्रिया आपका भी कि आपने अवसर दिया इस बात का कि मैं अपनी बात कह सकूं।
उम्मीद है एक और कहानी के साथ फिर कभी आपसे मुलाकात होगी।
जी जरूर, शुक्रिया आपका।
आप जुड़े हैं SBS हिंदी रेडियो के साथ। ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं? एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या फिर जहाँ आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहाँ हम हैं।